सर सॉरी, ज़रा देर हो गई आज में, तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो सूरह कहफ के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और खजर अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, फोर्थ स्टोरी ऑफ सूरह कहफ। पिछले हफ्ते हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम खजर अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए थे, राइट। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप करके एक और पॉइंट आपके सामने बयान करना था, वो ये कि ये जो स्टोरी है मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम की, इसका बैकग्राउंड पस मंज़र क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ वंस गिविंग अ स्पीच टू बनी इसराइल, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्पीच थी, लोग बहुत उससे मूव हुए, लोगों ने रोना शुरू कर दिया। तो एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या आपसे भी ज़्यादा नॉलेजबल आदमी है इस वक्त दुनिया में? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दे दिया कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। तो इस पे आपको बताया था कि ये फैक्चुअली स्पीकिंग तो उन्होंने बात सही करी थी, क्योंकि वही वक्त के नबी थे और सबसे ज़्यादा सीनियर नबी थे। हालांकि हारून अलैहिस्सलाम उनके भाई, वो भी नबी थे उस वक्त, राइट। दोनों एक साथ अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भेजे थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम, दोनों को, तो दोनों नबी थे, लेकिन इनमें दोनों में सीनियर कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में एज किसकी ज्यादा थी? हारून अलैहिस्सलाम की, ठीक है। हारून अलैहिस्सलाम एज वाइज ज्यादा बड़े थे, 3 साल बड़े थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो एज की एक अहमियत तो होती है, ठीक है। एज की वजह से आपको रिस्पेक्ट करनी होती है, आपको अदब के साथ पेश आना होता है, जो आपसे बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉलेज वाइज देखें ना, तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन एज, ठीक है। एज इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है कि एज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई 60 ईयर्स का हो और कोई 40 ईयर्स का हो, 40 ईयर्स वाला जो है वो टीचर है और 60 ईयर्स वाला स्टूडेंट है, ऐसा हो सकता है ना कि 60 ईयर्स का बंदा जो है वो स्टूडेंट है और टीचर जो है वो सिर्फ 40 ईयर्स के हैं। तो अब 40 ईयर्स वाले जो टीचर है वो 60 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वो बहुत बुरी बुरी तरीके से बातें बोले और वो बिल्कुल कोई रेस्पेक्ट ना करे, क्योंकि अभी मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, आई एम द टीचर, नो मैटर इफ आई एम यंगर देन यू, आई एम द टीचर, सो आई कैन स्कोल्ड यू, ठीक है ना, व्हिचएवर वे आई वांट टू स्कोल्ड यू। ऐसा नहीं है, ठीक है। एज की भी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो मर्तबा और मकाम होता है तो वो नॉलेज की बेस पर होता है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम नॉलेज की वजह से ज़्यादा करीब थे। लेकिन ये नॉलेज जो है, इस नॉलेज का मतलब जो है वो सिर्फ प्योर नॉलेज ये नहीं है कि जी फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा आपको पता हो, आपने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं उनको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। तो बुक रीडिंग की वजह से क्या होता है कि आपके पास, बहुत हंस रहे हैं, शौक है आपको भी, पता है मुझे, आपकी बात नहीं कर रहा वैसे मैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को बुक रीडिंग का शौक होता है, ठीक है। तो बुक रीडिंग इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बुक रीडिंग की वजह से आपको फैक्ट्स पता लग जाते हैं, दुनिया में यहाँ पर ऐसे होता है, दुनिया में वहाँ पर ऐसे होता है, और इस वक्त जो है वो ऑन इस वाले ईयर में जो है वो ऐसे हुआ था, इस वाले ईयर में ऐसे हुआ था, और उस शख्स ने जो है वो ऐसे बात करी थी और उसने ये बात करी थी, ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर होती हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म हासिल हो जाना। ठीक है, ये इल्म जो है अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, कि भाई इस बंदे को बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। कौन सा वाला इल्म अल्लाह ताला के एक्सेप्टेड है ये भी आप अगर बता दें, कौन सा वाला इल्म अल्लाह ताला को पसंद है? अच्छा, जिस शख्स को जो है बहुत ज्यादा पता हो कि फलाने चीज का फतवा ये है और उसका फतवा ये है और हाथ जो है वो वजू के अंदर ऐसे धोते हैं और पैर ऐसे धोते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, तो ज्यादा अल्लाह ताला के मकबूल हो जाता है शरिया का इल्म हासिल हो जाने से। जी, हदीस का इल्म नहीं। सही तरह से अगर इसका जवाब दें, शरिया का इल्म हो जाना खाली हाँ, वो वाला इल्म अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा मकबूल होता है कि जो के जिसके ऊपर वो इखलास के साथ अमल भी करता हो, सिंसेरिटी के साथ, ठीक है, अमल भी करता हो कि यानी जिसको के हम कहते हैं कि आखिरत के फायदे के लिए, ठीक है, तो ऐसा शख्स जो होता है ना इसका इल्म अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होता है। इसी को तकवा भी कहते हैं, इसी को तकवा भी कहते हैं, यानी इल्म के ऊपर जो इखलास के साथ अमल करता है ऐसे ही शख्स को मुत्तकी कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला के यहाँ नज़दीक कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम। ठीक है, कि तुम्हारे नज़दीक ज्यादा मुकर्रम, ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कि तुम में से ज्यादा तकवा वाला है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म रखने वाला तुम अल्लाह ताला के नज़दीक ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनियावी बातों के हों, चाहे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दीनी बातों के हो। इवन देन सिर्फ दीनी बातों के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता हो जाना ये भी अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है ना, तकवा जो है ये एक्सेप्टेड है, और तकवा का मतलब होता है वो इल्म के जिसके ऊपर इखलास के साथ अमल भी किया जाए, इसको तकवा कहते हैं, और तकवा इज मोर एक्सेप्टेबल, इज एक्सेप्टेबल। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के अंदर जो है वो ज्यादा अकरम कौन था? वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, अगर चाहे उनकी एज कम थी। तो ये उनसे एक बात ऐसी हो गई जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी कि भाई कोई इस तरह से क्लेम करे कि आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल। तो अल्लाह ताला ने ना फिर उनकी उनको क्या किया, फिर उनकी इस गलती की जो उनसे गलती हो गई थी ना मूसा अलैहिस्सलाम से, तो इस गलती की फिर इसलाह करी। ठीक है ना, इसलाह करी, ठीक है, करेक्शन किया इस गलती का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तरबियत करना भी कहते हैं, ट्रेन करना भी कहते हैं। ठीक है ना, यू फिक्स ए फॉल्ट, यू फिक्स समवंस फॉल्ट। ठीक है ना, तो अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत जो है वो कैसे करी है, किसके जरिए से कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत? कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में भी आप जवाब दे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या तरीका इस्तेमाल किया? खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवाया, ठीक है, अच्छा, तो खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवाया, अच्छा, तो अल्लाह ये जो तरबियत है मूसा अलैहिस्सलाम की, फिर अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए से करवाई। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं ना कि खजर अलैहिस्सलाम के जरिए से करवाई। ठीक है, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया वही। वही से क्या मुराद है? कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही करी कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें? नहीं, ऐसे नहीं किया अल्लाह ताला ने। ठीक है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही नहीं करी कि आप ने ये काम गलत किया और आप ऐसे नहीं करें। ठीक है, ऐसा कर सकते थे अल्लाह ताला, लेकिन किया नहीं, बल्कि क्या किया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर अलैहिस्सलाम के पास भेजा। ठीक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात पैदा हुई, अल्लाह की तरफ से पैदा हुई ना, कि मुझे जो है वो खिजर अलैहिस्सलाम से इल्म सीखना चाहिए। ठीक है, तो खिजर अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने भेजा, और अब हम ये पढ़ेंगे कि खिजर अलैहिस्सलाम ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की, उनको कैसे ट्रेन किया। ठीक है, तो ये हम पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो आपके सामने रखेंगे। तो ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो सफ़र करते हुए, ठीक वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर के मजमाल बहरैन था, दो सीज आपस में मिलते थे। वहां पर जो उनकी मछली उन्होंने रखी हुई थी अपने पैक के अंदर, तो वो मछली वहां से निकली और उसने जाकर के समंदर में एक टनल बना ली। ठीक है, तो वो सारा स्टोरी तो हम पढ़ चुके हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम बैक ट्रैक करते हुए उस जगह पर वापस आए, जब यूशा बिन नून को याद आया कि अच्छा वो मछली जो है वो तो चली गई है वगैरह ना, तो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको सलाम किया और सलाम का उन्होंने जवाब दिया और पूछा कि कौन हो भाई तुम, कौन है आकर के यहाँ पे मुझे सलाम कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे जो है इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो हम पेज नंबर 625 के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, वॉल्यूम नंबर 5 मारिफुल कुरान, के मूसा अलैहिस्सलाम कंफर्म, ही सेड यस आई मूसा बनी इसराइल, आई हैव कम हियर टू आस्क यू टू टीच मी द नॉलेज अल्लाह हैज गिवन टू यू स्पेशली। यानी अल्लाह ताला ने जो आपको स्पेशल नॉलेज दी है, जो कि इवन मुझे भी नहीं दी, हालांकि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं आपसे वो नॉलेज सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखिए खजर अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। ही सेड कि यू विल बी अनएबल टू रिमेन पेशेंट विद मी, तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकोगे, पेशेंट नहीं रह सकोगे कि मेरी नॉलेज को जो है तुम समझ सको। ओ मूसा, देयर इज अ नॉलेज अल्लाह हैज गिवन टू मी एंड विच यू डू नॉट हैव, व्हाइल देयर इज ए नॉलेज विच अल्लाह हैज गिवन टू यू विच आई डू नॉट हैव। ठीक है, कितनी प्यारी बात करी। ठीक है ना, ऐसे होता है ना कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई चीज दी होती है और किसी और को कोई दूसरी चीज दी होती है। ठीक है, नेमतें, अल्लाह ताला ने हमें क्या नेमत दी? अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक अच्छा घर दिया, अच्छी फैमिली दी। ठीक है, तो ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है। किसी और को अल्लाह ताला ने कोई बहुत अच्छी फैमिली नहीं दी होती। ठीक है, लेकिन उसको अल्लाह ने कोई और नेमत दी होती है। ठीक है, पिछले दिनों जो बच्चे माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनमें से आप में से किसी से बात हो रही थी कि कुछ बच्चे जो हैं जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने फोटोग्राफिक मेमोरी दी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो चीज़ जो है उसकी फोटोग्राफ आपके जहन के अंदर आ जाती है, पिक्चर खिंच जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे जब कुरान के मसहफ को देखते हैं तो उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, याद कर रहे हैं, घंटों याद कर रहे हैं, चंद लाइनों को याद करने में उनको घंटों लग रहे हैं, वो एक दफा पढ़ते हैं and snap, everything just transfers into their brain, उनको याद हो जाता है, दो दफा पढ़ते हैं याद हो जाता है, बस खलास। ठीक है, तो इनको फोटोग्राफिक मेमोरी दी होती है। ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे होते हैं जिनको के अल्लाह ने फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं दी होती है। ठीक है, अब वो बच्चे जो होते हैं जब वो कुरान हिफ्ज कर रहे होते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा फिर मेहनत करनी होती है, बड़ी देर तक उनको याद करना होता है, फिर कहीं जाकर के उनको याद होता है, फिर उनको रिवाइज करना होता है, फिर उनको सुनाना होता है, फिर उसमें भी गलतियां निकलती हैं, फिर उसके बाद उस्ताद उनको वापस भेज देता है, फिर उनको याद करना होता है, फिर उनको दोबारा सुनाना होता है, गलतियां निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इनको फोटोग्राफिक मेमोरी अल्लाह ने नहीं दी हुई होती है। ठीक है, लेकिन अगरचे इनको फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं दी होती है, लेकिन इनको अल्लाह ने कोई और नेमत दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इन बच्चों को अल्लाह ने ये नेमत दी होती है कि ये जो है ना बात को समझ लेते हैं। ठीक है, दे हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, बट दे कैन नॉट मेमोराइज वेरी क्विकली, दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली, दे कैन नॉट मेमोराइज। ठीक है, तो इनको ये वाली नेमत दी और दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को ये वाली नेमत दी। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि जिसको जो नेमत दी है वो उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। ठीक है, वो उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और दूसरे से हसद ना करे, जेलस फील ना करे। ठीक है, कि इसको तो देखो फोटोग्राफिक मेमोरी है, मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। अब वो गुस्सा हो रहा है उसके ऊपर कि भाई ये क्यों इतना जल्दी याद कर लेता है, टीचर जो है वो उसको जो है वो सबक आगे बढ़ा देता है। ठीक है ना, टीचर उसको जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देता है, मुझे जो है वो जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है भाई, अल्लाह ने आपको ये वाली नेमत नहीं दी, इधर आ जाए उस कुर्सी इधर इस तरफ कर दे। ठीक है, आपको दूसरी कोई नेमत दी है, इसको ये वाली नेमत दी है। ठीक है, इसके ऊपर हमें जेलस हरगिज फील नहीं होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कोई दूसरी नेमत दी होगी। ठीक है, तो एसी का क्या मतलब है? अच्छा, खैर देखिए इसके ऊपर एक वाक्य भी याद आता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स के ऊपर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है, सबने भी सुना होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सबसे बड़े मुहद्दिस कहलाते हैं, उनकी जो हदीस की किताब है सही अल बुखारी वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हदीस की किताब कहलाती है, ठीक है। और आपने उनका भी नाम सुना होगा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये मुहद्दिस नहीं मशहूर है, बल्कि ये क्या मशहूर है, ये फकीह मशहूर है। फकीह का मतलब क्या होता है कि द वन हु अंडरस्टैंड्स थिंग्स वेरी क्विकली, ठीक है। मुहद्दिस की क्या स्पेशलिटी होती है, वो मेमोराइज बहुत क्विकली कर लेता है, ठीक है, और फकीह की क्या क्वालिटी होती है कि वो चीजों को समझ बहुत आसानी से लेता है, ठीक है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, इनको अल्लाह ताला ने फोटोग्राफिक मेमोरी दी थी, ये भी ऐसे ही थे कि जब एक दफा किसी चीज को पढ़ लेते थे इनको याद हो जाती, पक्की याद हो जाती, 100% विदाउट ए सिंगल मिस्टेक उनको याद हो जाती, ठीक है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक दफा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे फकीह बनना चाहिए, ठीक है, मुझे फकीह बनना चाहिए, यानी आलिम बनना चाहिए, चीजों के मुझे समझना चाहिए और फिर मुझे जो है वो लीगल रूलिंग्स वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर क्या किया कि इनको मालूम था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े फकीह थे, उनका तो इंतकाल हो चुका था, ठीक है, लेकिन उनके एक स्टूडेंट इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वो जिंदा थे, ठीक है, उस जमाने में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ट्रैवल करके इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि आप मुझे इल्म सिखाइए ताकि मैं भी फकीह बन जाऊं, ठीक है, आप मुझे इल्म सिखाइए ताकि मैं भी फकीह बन जाऊं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको देखा और वो या तो उन्होंने कुछ उनसे बात करी या ऐसे ही देख करके अल्लाह ताला ने उनको ऐसी समझ अता फरमाई थी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कि उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, नहीं, मैं आपको इल्म नहीं पढ़ाऊंगा, आप जाएं और आप हदीस का काम करें। हदीस का काम क्या मतलब कि हदीसें याद करें और उनको फिर किताब के अंदर लिखें, उनको प्रिजर्व करें किताब के अंदर, मैं आपको इल्म नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं समझता कि आपको इल्म पढ़ना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बात मान ली, वो टीचर थे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी एज अ स्टूडेंट उनके पास गए थे, तो इमाम बुखारी ने उनकी बात मान ली, ही केम बैक एंड ही केप्ट ऑन सर्विसिंग हदीस, ठीक है, हदीस की खिदमत करना उन्होंने कंटिन्यू किया और अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ा मुकाम अता फरमा दिया हदीस के अंदर, ठीक है। क्या फर्क था इन दोनों में, इन दोनों में फर्क यह था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने मेमोराइज करने वाली नेमत दी थी, समझने वाली नेमत नहीं दी थी, ठीक है ना, उतनी नहीं दी थी जितनी कि एक फकीह के लिए चाहिए होती है। हाँ, जाहिर उनको थोड़ी बहुत समझ तो होगी, ठीक है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नाउज बिल्ला बेवकूफ थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस लेवल की समझ नहीं दी थी जिस लेवल की समझ जो है एक फकीह बनने के लिए चाहिए होती है। द टीचर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है, एंड द टीचर सेड, मैं नहीं आपको फकीह बना सकता, आप जाके हदीस की खिदमत करें। फकाहत जिसको समझ कहते हैं, वो नेमत किसको दी थी अल्लाह ताला ने, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दी थी और इमाम अबू हनीफा के फिर जो स्टूडेंट्स थे जैसे इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे लोग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी फकीह थे, इमाम मालिक बहुत बड़े फकीह थे, ठीक है, तो ये लोग फुकहा थे, तो इनको अल्लाह ताला ने समझ की नेमत दी थी। तो अब ये लोग क्या करते थे, इनको जो अल्लाह ने नेमत दी थी ना, ये उस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और उस नेमत में ही फिर रह करके फिर दीन की खिदमत करते थे, ठीक है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जिस अगर किसी और को कोई और नेमत दी है तो उस पे भी अल्लाह ताला, यानी उस पे भी जो है वो उसकी तारीफ करें कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तुम्हें ये वाली नेमत दी है, ठीक है, उसके साथ हसद फील ना करें, जेलसी फील ना करें, गुस्सा ना करें उसके ऊपर कि उसको क्यों और मुझे क्यों नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि आप उसके पास जा करके ये ख्वाहिश जाहिर करें कि भाई आपके पास जो नेमत है मैं वो नेमत भी सीखना चाहता हूँ, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है सीखने वाली तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके पास वो नेमत सीखना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें बुराई नहीं है। बुराई किसमें होती है by in feeling jealous about it. ठीक है, तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने एक दूसरी नेमत दी थी जिसको कि इल्म लदुन्नी कहते हैं, एक खास किस्म का इल्म होता है, ठीक है, जो कि आगे हम बात करेंगे, उसको इल्म लदुन्नी कहते हैं, लदुन्नी, ठीक है, एक्चुअली अरबिक का वर्ड है लदुन, लाम दाल नून, ठीक है, लाम दाल नून, नून, लदुन कहते हैं इसको, इस वर्ड को, ठीक है, तो इस वर्ड से निकला लदुन्नी, ठीक है, और मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत दी थी, शरीयत की नेमत दी थी, शरीयत के इल्म की, ठीक है, तो खिजर अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम से यही बात कही कि भाई आपको अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है वो मुझे नहीं दी है, और मुझे जो अल्लाह ने नेमत दी है वो आपको नहीं दी है, ठीक है, तो मूसा अलैहि सलाम सेड कि इफ अल्लाह विल्स यू विल फाइंड मी पेशेंट, आई शैल नॉट डिसओबे यू एंड इन एनी ऑफ योर ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि भाई मैं स्टूडेंट बन के आपके पास आया हूँ और मैं आपको अपना टीचर बना रहा हूँ, तो आप जो मुझे हुक्म देंगे ना मैं उस हुक्म के ऊपर अमल करूंगा, मैं बात मानूंगा आपकी, जैसे कि एक अच्छा स्टूडेंट यही करता है, इमाम बुखारी ने भी तो यही काम किया था ना, राइट, तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम दे दिया उनको इसके रिवॉर्ड में, उसी तरह से मूसा अलैहि सलाम ने भी यही बात करी कि आप जो मुझे हुक्म देंगे मैं उसके ऊपर अमल करूंगा और आप मुझे पेशेंट पाएंगे, पेशेंट से मुराद यहाँ पर साबिर, सबर करने वाला, तो अल-खिज़र अलैहि सलाम ही सेड इफ यू आर टू बी विद मी डू नॉट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अनलेस आई टेल यू अबाउट इट फर्स्ट, तुम मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं करना कि जब तक कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत ना दूं, ठीक है, या मैं उसके बारे में तुम्हें बता ना दूं, उस वक्त तक तुम मुझसे कोई सवाल ना करना, ठीक है, तो ये कंडीशन लगा दी टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, तो बड़े ना माने फिर लेसन्स लिखे हैं इस पूरे वाक्य से, तो उनमें से लेसन एक क्या लिखा यहाँ पर कि टीचर जो है स्टूडेंट के ऊपर कंडीशंस लगा सकता है, ठीक है, भाई इफ यू आर टू सीक नॉलेज फ्रॉम मी आई डिमांड दैट यू कम ऑन टाइम, यू कम रेगुलरली, ठीक है ना, तुम छुट्टी नहीं करोगे, तुम वक्त पर आओगे और तुम जो है वो खामोश बैठ करके मेरे मुझसे इल्म हासिल करोगे, ठीक है, मेरे पूछे बगैर तुम घर वापस नहीं जा सकते, इस तरह के कंडीशंस जो है वो टीचर लगा सकता है स्टूडेंट के ऊपर, तो इन्होंने क्या कंडीशन लगाई, खामोश रहोगे, चुप रहोगे, ठीक है, हम होते तो फिर हम तो उधर ही भाग जाते हैं इनसे कि चुप रहना तो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है, राइट, तो मूसा अलैहि सलाम ने वादा कर लिया कि नहीं मैं ठीक है खामोश रहूंगा। आफ्टर हैविंग सेड दिस दे स्टार्टेड वॉकिंग बाय द शोर, ठीक है, वो जो पानी के करीब थे ना तो वो शोर के ऊपर चलना शुरू हो गए, यानी सी शोर के ऊपर, सी साइड के ऊपर। देन केम ए बोट, ए राइड वॉज नेगोशिएटेड, तो इतने में ना एक कश्ती आई उस ओशन में, ठीक है, और सी शोर के ऊपर उस कश्ती ने पार्क किया, तो फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने ना उस कश्ती का जो वो था मल्लाह कहते हैं कैप्टन ऑफ द बोट, ठीक है, उससे बात करी कि भाई हमें जो है ना दूसरे किनारे पर जाना है, ठीक है, तो आप हमें वहां छोड़ देंगे, तो वो राजी हो गया कि हाँ हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा, द बोट पीपल री रेकग्नाइज अल खिजर अलैहिस्सलाम एंड लेट देम कम ऑन बोट फ्री ऑफ एनी चार्जेस, ठीक है, तो खिजर अलैहिस्सलाम से उन्होंने कोई पैसे नहीं चार्ज किए इसके ऊपर, वो पहले से खिजर अलैहिस्सलाम को जानते थे और होंगे खिजर अलैहिस्सलाम मशहूर होंगे उस जगह में, बहुत नेक आदमी है, अल्लाह के वली हैं, ठीक है, तो इनसे क्या पैसा लेना भाई, तो उन्होंने फ्री अपनी कश्ती के ऊपर सवार कर दिया, और खिजर अलैहिस्सलाम के साथ चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम थे तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम से भी कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, ठीक है, तो इस तरह से होता है कि जब कोई नेक आदमी होता है तो लोग इस तरीके से फिर उनको फेवर करते हैं ताकि अल्लाह ताला के यहाँ वो भी मकबूल हो जाए, अल्लाह ताला उनको भी पसंद कर लें, क्योंकि नेक लोगों से जो मोहब्बत करना है ना ये भी अल्लाह से मोहब्बत करने ही की एक शक्ल होती है, ठीक है, नेक लोगों से मोहब्बत करना, क्योंकि हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं ना तो उनकी शक्ल सूरत की वजह से मोहब्बत नहीं करते, उनके कपड़ों की वजह से मोहब्बत नहीं करते, उनके जो है वो खाने पीने या घर और गाड़ी की वजह से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उनसे किस लिए मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो इस मोहब्बत को फिर अल्लाह की मोहब्बत ही कहा जाता है, ठीक है, तो इन लोगों ने इस मोहब्बत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम से कोई पैसे चार्ज नहीं किए, तो यहां पर जो है मुफस्सरीन ने लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो हजरत यूशा बिन नून भी थे, उनके जो सर्वेंट थे फता जिसको कहा था ना पिछली क्लास में हमने, तो यहां से जो है ना फिर यूशा बिन नून का कोई जिक्र नहीं है, बस इन दोनों का बोर्ड पे सवार होना ही मेंशन है। तो इससे ये पता लगता है कि या तो यूशा बिन नून जो थे वो यहाँ से वापस चले गए, ठीक है ना, अब मूसा अलैहिस्सलाम को उनके सर्विस की जरूरत नहीं थी तो वापस चले गए। अच्छा, तो फिर या तो वो वापस चले गए, ठीक है, या ये कि वो थे तो साथ साथ लेकिन अल्लाह ताला ने उनका फिर अब कोई जिक्र नहीं किया, ठीक, कोई उनका तस्करा नहीं किया। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल। अच्छा, फिर क्या हुआ जी कि नो सूनर डिड ही स्टेप इनटू द बोट अल खिज़र अलैहिस्सलाम फोर्स्ड आउट ए पैनल ऑफ द बोट विद द हेल्प ऑफ एन एक्स। ठीक है, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास या तो पहले से एक कुल्हाड़ा एक्स थी या वो बोट में पड़ी हुई होगी, तो उन्होंने उस एक्स को उठाया, कुल्हाड़े को उठाया, और बोट जो बनी होती है ना वो टिपिकली वुड से बनी होती है। पुराने जमाने की कश्तियां वैसे भी लकड़ी की बनी हुई होती हैं, आज भी ऐसी कश्तियां मौजूद हैं। तो लकड़ी के ना फिर उन्होंने एक एक यानी एक पीस ऑफ वुड नहीं होता बल्कि वो लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, उन प्लैंक्स को आपस में जोड़ कर करके कश्ती बनाई हुई होती है। ठीक है, गोया कि जैसे स्लैब्स होते हैं, मार्बल के स्लैब्स आपने देखे होंगे हरम में, जैसे मार्बल के स्लैब लगे होते हैं ना, उसी तरीके के लकड़ी के प्लैंक्स कहते हैं इनको। तो इन्होंने क्या किया कि उन प्लैंक्स में से ना एक प्लैंक को जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, अब जाहिर है कश्ती जो है वो तो समुंदर में थी, पानी में थी, ठीक है, तो अगर वो प्लैंक आप निकाल देंगे लकड़ी का एक तो पानी अंदर आ जाएगा। ठीक है, और पानी जब कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती फिर तैर नहीं सकती, कश्ती जो है वो सिंक हो जाती है, ठीक है, डूब जाती है। तो अब इसके ऊपर उलमा ने लिखा कि कश्ती डूबी क्यों नहीं। ठीक है, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात उलमा ने पॉसिबली लिखी है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए कि कोई जिक्र नहीं है हदीस के अंदर कि क्यों नहीं डूबी कश्ती। ठीक है, इस वजह से उलमा हैव टू कम आउट विद एन एक्सप्लेनेशन। तो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज कि या तो उन्होंने जो कश्ती को इस तरह से लकड़ी को तोड़ा ना, तो अल्लाह ताला ने मौजजाती तौर पर एज अ मिरेकल कश्ती को जो है वो यानी पानी को जो है ना कश्ती में आने नहीं दिया। ठीक है, ये मिरेकल था और ये मिरेकल पॉसिबल है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। तो मिराक्युलसली पानी कश्ती के अंदर नहीं आया, ये एक कॉज हो सकती है कश्ती ना डूबने की। दूसरी कॉज ये हो सकती है कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा इनविजिबल किस्म का प्लैंक था, गोया के ग्लास का बना हुआ प्लैंक या कोई उस किस्म का कोई भी मटेरियल होगा, प्लास्टिक जैसा, जो कि सी थ्रू होता है। ठीक है, तो उस किस्म का जो प्लैंक था ना उनके पास, वो उन्होंने उस लकड़ी की जगह फौरन लगा दिया। जब वो लगा दिया ना तो देखने में ऐसा लगता था एज इफ के कुछ नहीं है, पानी नजर आता था क्योंकि वो सी थ्रू था, लेकिन पानी आ नहीं सकता था बिकॉज ऑफ दैट प्लैंक, पानी अंदर नहीं आ सकता था। ठीक है, और तीसरी वजह यह है कि भाई नहीं, तीसरी वजह नहीं, दो ही वजूहत, ठीक है, तो anyway, जो भी हुआ पानी उस कश्ती के अंदर नहीं आया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को ये काम करते हुए देखा कि जी उन्होंने कश्ती जो है वो तोड़ दी और उसको खराब कर दिया, तो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम जो था ना वो एक बड़े स्पेशल किस्म के प्रॉफिट थे। ठीक है, हर प्रॉफिट की अल्लाह ताला के यहाँ जो प्रॉफिट्स हैं हर एक की ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, खास खास क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की खास क्वालिटी जो उलमा बयान करते हैं वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ दोस वेरी टफ गाइस। ठीक है, वो जो थे ना वो जरा सख्त मिजाज भी थे, ठीक है, और फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, उन्होंने एक किप्ती को जो घूसा मारा था तो टेक्निकल नॉकआउट कर दिया था ना, उसको मर ही गया था, एक एक पंच से जो है वो बंदा मर गया, तो बड़े स्ट्रांग भी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना वो जरा यानी जैसे एक होता है एक यंग मैन यूजुअली होता है वो ऐसे, अगरचे कि इस वक्त वो यंग थे नहीं, लेकिन जैसे यंग मैन होता है ना वो बात सुनते हैं तो फिर फौरन से उन्होंने कोई जवाब देना होता है, एंड दे कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक, इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो है ना वो फौरन बोल पड़े। ठीक है, कि ही कुड नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ, ही सेड दीस पीपल गेव अस अ फ्री राइड ऑन द बोट, दिस इज व्हाट यू डिड टू देम इन रिटर्न। ये आपने उनको बदला दिया है कि उन्होंने तो हमें फ्री राइड दी और आपने उनकी कश्ती तोड़ दी है, ये का किस किस्म का काम किया आपने, यू टोर देयर बोट अपार्ट सो दैट दे वुड ड्राउन। ठीक है, यानी लोग मर जाएं डूब करके, यू हैव रियली डन समथिंग वेरी बैड, बड़ा बुरा काम किया तुमने। वल खिज़र अलैहिस्सलाम सेड डिड आई नॉट टेल यू बिफोर दैट यू विल बी अनएबल टू रिमेन पेशेंट विद मी। ठीक है, मैं तुम्हें पहले बताया था ना कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे. Thereupon Musa alayhi salam offered his excuse that he had forgotten his promise and requested him not to take him to task on his act of inadvertent omission. ठीक है. Did he do this with the people, with the boat people knowing? इसका वैसे कहीं जिक्र तो नहीं है कि did he do this with the boat people knowing or not knowing? ठीक है, लेकिन बज़ाहिर वाकई से ऐसे ही लगता है कि कश्ती वालों को उनका ये काम जो है वो नज़र नहीं आया. ठीक है, क्योंकि किसी और ने कुछ कहा नहीं. अगर लोग देख रहे होते हैं ना उनको ये काम करते हुए, तो यूजुअली लोग पैनिक हो जाते हैं ना. मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे तो वो पैनिक हो गए ना कि भाई लोग डूब जाएंगे. तो किसी और ने पैनिक नहीं किया, किसी और ने कोई बात नहीं कही और कुछ हुआ नहीं इस तरह का. तो अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने ये काम कैसे किया. बहुत लाइटनिंग स्पीड में उन्होंने काम किया होगा, जैसे भी किया होगा, छुपा के किया होगा वगैरह. कश्ती कितनी बड़ी थी ये भी हमें नहीं पता. ठीक है, हो सकता है इतनी बड़ी कश्ती हो कि बाकी लोग जो है वो दूसरे कोने में बैठे हुए हों और ये लोग इस कोने में बैठे हुए, उन्होंने सिर्फ एक कोने से ऐसा काम कर दिया. तो दिस इज समथिंग वी डोंट नो. ठीक है, तो देयर अपॉन मूसा अलैहिस्सलाम ऑफर्ड हिज एक्सक्यूज. तो मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए. ठीक है, तो भूलना आपको बताया था कि भूलना जो है ना अल्लाह ताला माफ कर देते हैं. भाई भूल चूक किसी से भी हो सकती है, नबी से भी भूल चूक हो सकती है. तो वो अपने वादे को भूल गए. थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आने के वादा किया था, लेकिन वो भूल गए और वो सच्चे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे कि मैं भूल गया. वो वाकई भूल गए थे, उनसे रहा नहीं गया था, उन्होंने ये बात कर दी. ठीक है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको इस दफा एक्सक्यूज कर दिया. द प्रॉफिट, अच्छा ये जो है ना, ये पूरी की पूरी ये स्टोरी चल रही है, ये असल में एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मेंशन है. ठीक है, तो ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं. तो आगे फरमाते हैं, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर रिलेटिंग दिस इवेंट सेड, द फर्स्ट ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मूसा अलैहिस्सलाम अगेंस्ट अल खिज़र वाज एक्टिवेटेड बाय फॉरगेटफुलनेस. एक्टिवेटेड बाय का क्या मतलब के मूसा अलैहिस्सलाम से जो पहली गलती हुई ना खजर अलैहिस्सलाम के साथ, कि उनसे सबर नहीं हुआ, उन्होंने जो है फौरन से पूछ लिया कि ये आपने क्या किया, बहुत बुरा काम किया. तो इसकी एक्सक्यूज जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाई कि भाई क्या वजह हो गई कि मुझसे गलती हो गई, वो थी फॉरगेटफुलनेस, कि भाई मैं भूल गया, भूल से मुझसे ये गलती हो गई कि मैं चुप नहीं रह सका और मैंने बोल दिया. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना वॉज एक्टिवेटेड बाय फॉरगेटफुलनेस, तो इसका मफहूम ये बनता है कि इट वॉज एक्सक्यूज्ड अवे by with forgetfulness. ठीक है, कभी मैं भूल गया. The second as a condition, फिर दूसरी गलती, आगे एक और गलती हुई थी इसी तरीके से, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं भूल गया था, बल्कि उन्होंने फिर ये कहा कि भाई अब अगर मुझसे गलती हो, थर्ड टाइम गलती हो, तब आप मुझे अपने साथ नहीं रखिएगा. तो ये एक कंडीशन लगा दी मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अब अगर गलती होगी ना, तीसरी गलती, तब जो है वो मुझे साथ नहीं रखेगा. तो यही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि द सेकंड वन वाज एक्टिवेटेड बाय कंडीशन एंड द थर्ड बाय इंटेंशन. क्या मतलब कि फिर तीसरी मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बोल दिया कुछ. तो जो तीसरी मरतबा बोला ना, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई, ना उन्होंने ये कहा कि भाई एक और चांस दे दें, अगर फिर मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे छोड़ दिएगा, बल्कि तीसरी मर्तबा गलती करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे बात बात करी कि उन्होंने जानबूझ करके ये काम किया है, एंड दिस आई हैव हैड इट विद यू, बस अब मुझसे सबर नहीं हो सकता, तो अब मैं आपसे कोई चौथा चांस नहीं मांग रहा. ठीक है ना, मैंने इंटेंशनली आपको इस दफा रोका है, ये जो आपने तीसरे वाली हरकत करी है ना. तो इसको नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि द थर्ड बाय इंटेंशन. मीनवाइल, अच्छा तो फिर क्या हुआ कि मीनवाइल ए बर्ड केम, सैट डाउन ऑन द साइड ऑफ द बोट एंड टुक आउट ए बीक फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी. ये नबी अलैहि सलाम बता रहे हैं, ठीक है, कि एक बर्ड आई, सीगल होगी, क्योंकि जिस तरह की जगह होती है तो यहाँ पे सीगल्स होती हैं. तो वो बोट के कॉर्नर पे बैठी और उसने किसी तरह से झुक करके ना समंदर का थोड़ा सा पानी अपनी बीक में लिया, अपनी चोंच के अंदर लिया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बिकॉज इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बाद में कुछ ही देर के बाद. तो फिर क्या हुआ कि इसने जो थोड़ा सा पानी लिया ना अपनी चोंच के अंदर, तो देयर अपॉन एड्रेसिंग मूसा अलैहिस्सलाम अल खिज़र सेड, खजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे उस बर्ड को कि वो ऐसा काम कर रही है। तो खजर अलैहिस्सलाम ने ना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इवन द कंबाइंड नॉलेज ऑफ द टू ऑफ अस, यानी तुम्हारे पास शरीयत की नॉलेज है और मेरे पास इल्म लदुन्नी है कि दुनिया में काम कैसे होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को रमजान से पहले जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी उसमें समझाया था कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है, एक होता है दुनिया में काम कैसे होते हैं उसको इल्म लदुन्नी कहते हैं, बाद में और थोड़ी बात होगी। तो बहुत ज्यादा नॉलेज होती है कि भाई हाउ डू थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इतनी नॉलेज जो मेरे पास है यानी खिज़र अलैहि सलाम के पास और वो सारी की सारी शरीयत की नॉलेज जो कि तुम्हारे पास है, ठीक है, सबको अगर कंबाइन कर देना तो इट कैन नॉट क्लेम ए स्टेटस अगेंस्ट डिवाइन नॉलेज दैट वुड बी कंपेयर्ड इवन विद द वाटर इन द बीक ऑफ दिस बर्ड एज रिलेटेड टू द सी। बात समझ में आई कि मूसा अलैहि सलाम से खिज़र अलैहि सलाम ने यह कहा कि देखो तुमने देखा ना कि इस बर्ड ने अपनी चोंच के अंदर पानी लिया, तो एक बर्ड की चोंच में कितना पानी आता होगा भाई, है? पेलिकन की बात नहीं हो रही है, पेलिकन की चोंच में तो फिर थोड़ा ज्यादा पानी आ जाता है जिसके इतना बड़ा सा वो होता है उसका, ये कोई बर्ड थी छोटा सा उसका पानी आया होगा। अच्छा, सी के अंदर कितना पानी होता है, जितने गैलन्स एंड गैलन्स एंड गैलन्स, पता नहीं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स जो है वो पानी एक सी के अंदर होता होगा। ठीक है ना, हमने कभी मेजर नहीं किया, कोई मेजर कर ही नहीं सकता पानी का कितना वजन होता है, वी कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, थोड़ा पानी अगर आप वो जो हमारे घर के अंदर पानी की बोतलें आती हैं वो हम उठा करके जब चढ़ाते हैं ना वाटर कूलर के ऊपर तो थोड़ा सा दर्द हो जाता है ना, इतना सा होता है खाली वो हमसे उठाया नहीं जा रहा होता, औरतों से तो बिल्कुल ही नहीं उठाया जा रहा होता। ठीक है, वो मर्दों को भी बुलाती हैं, कोई करता है, कोई पानी उठा कर लगाते हैं। तो पूरे ओशन के अंदर जितना पानी होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, उसका कितना वेट होता है, वी कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि देखो इतना बड़ा जो ओशन है ना, ठीक है, उसमें से इस बर्ड ने कितना पानी लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितना कम ये पानी है जो इस बर्ड की बीक के अंदर है उस पूरे ओशन के मुकाबले में, हमारी नॉलेज अल्लाह ताला की नॉलेज के मुकाबले में उससे भी कम है, यानी अल्लाह की जो नॉलेज है ना वो इस ओशन के पानी से भी ज्यादा है और हमारी नॉलेज उसके मुकाबले में जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इस बर्ड की बीक के अंदर है उससे भी कम है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं कि भाई अल्लाह की नॉलेज कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है। तो ये अल्लाह की जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज जो है ये अगेन कमिंग बैक टू दिस कि फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली नॉलेज खाली नहीं है, अल्लाह ताला को सारे फैक्ट्स पता है कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है और कब होगा, कैसे हो, राइट, यानी क्या चीज होगी फ्यूचर में, पास्ट में क्या चीज हुई, प्रेजेंट में क्या चीज हो रही है, फ्यूचर में क्या चीज हो रही है, ये फैक्चुअल नॉलेज कहलाती है फैक्ट्स की। ठीक है, एक होती है फिगर्स की नॉलेज, पास्ट में कितना हुआ, कितना ज्यादा, कितना कम, प्रेजेंट में कोई चीज कितनी ज्यादा, कितनी कम, और फ्यूचर में कोई चीज कितनी ज्यादा, कितनी कम, इसको फिगर्स की नॉलेज कहते हैं। अल्लाह ताला को सारे फैक्ट्स की नॉलेज है, अल्लाह ताला को सारे फिगर्स की नॉलेज है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अल्लाह ताला को सिर्फ व्हाट एंड हाउ मच नहीं बल्कि व्हाई, क्यों, राइट, क्यों ये वाला काम पास्ट में ऐसे हुआ और इतना हुआ, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर ये वाला काम क्यों हो रहा है इतना और ऐसे, और फ्यूचर में ये वाला काम क्यों हो रहा है, क्यों होगा इतना और ऐसे। तो अल्लाह ताला को फैक्ट्स, फिगर्स एंड व्हाइज, WHY, व्हाइज, ये नॉलेज भी अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, तो हमारे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, तो इस वजह से ये बात याद रखने की ये है कि अल्लाह ताला जो काम करते हैं ना हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई ये क्यों ऐसे हुआ, ये क्यों इतना हुआ, ये क्यों ऐसे होता है, राइट, या ये क्यों ऐसे होगा, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते इसलिए कि हमारी नॉलेज इतनी कम है, इतनी कम है कि हम जो है वो समझ ही नहीं सकते अल्लाह ताला की विजडम को, अल्लाह ताला की जो रीजंस हैं, वाइज हैं, ठीक है, ये सारी चीज को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, इसके ऊपर छोटी सी एक मिसाल देते हैं हमारे उलमा कि आप अगर चाहें क्या कहते हैं कोहे हिमालय को कूजे में बंद करना, ठीक है। हिमालयाज जो है वो कितना बड़ा माउंटेन है ना, ठीक है। अगर आप उस माउंटेन को चाहें कि ये एक छोटे से जो है वो आप पॉट के अंदर उसको बंद कर लें, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, पॉट इतना छोटा है और हिमालयाज इतने बड़े हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी जो अकल है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के अंदर जो कुछ सेल्स हैं वो हमारी अकल उतनी है, ठीक है। ब्रेन सेल्स को इस्तेमाल करके हम चीजों को समझते हैं ना, तो हमारी अकल कितनी बड़ी है, इतनी सी है जितनी कि हमारा सर है। तो सर के अंदर भी पूरी अकल नहीं होती, वो भी उससे छोटी होती है, सर से भी छोटी होती है हमारी अकल, जो के अंदर थोड़ी सी फिट हो जाती है, ठीक है। तो अब इतनी छोटी सी अकल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी मजे की बात याद आई, उम्मे कुलसुम साहब भी मौजूद हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड बात थी कि अल्लाह की अजमत को समझने के लिए, ये बात हमने अपने बच्चों को समझाई थी पिछले दिनों, तो आप लोगों के सामने भी, आप भी स्टूडेंट्स हैं, हमने उम्मे कुलसुम को ना अभी रिसेंटली घर के अंदर के भाई अम्मी कहाँ है, राइट, होते हैं ना बच्चों को बताते हैं अब्बू कहाँ है, अम्मी कहाँ है, दादा जान कहाँ है, भैया कहाँ है भैया बैठे हैं, तो इस तरह बताना शुरू किया। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे कि फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई हमारे बुजुर्ग जो है वो बच्चों को ये सिखाते हैं अल्लाह कहाँ है, ठीक है। तो हमने फिर उम्मे कुलसुम को ये कहा कि जी अल्लाह कहाँ है, तो फिर सिखाया है कि अल्लाह ऊपर है, ठीक है, अल्लाह ऊपर है, सही। तो अब इनको सिखाया तो अल्लाह ऊपर है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं कुछ बता देती हैं, आपके सामने भी बता रही हैं। तो अब ये जहन में एक बात आई कि जरा बच्चों को ये समझाएं कि ये अल्लाह ऊपर ऐसे क्या मुराद है। भाई आपने ग्लोब को कभी देखा है, अर्थ किस तरह होती है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो तो एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का, फुटबॉल से भी थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दें, ऐसी एक अर्थ होती है, ठीक है। तो अब अर्थ के अंदर ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप यूं करते हैं, ठीक है, तो यूं करने का क्या मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में कह रहे हैं कि भाई ये ऊपर जो है वो एटमोस्फेयर है जहाँ पे क्या हवा होती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्लाउड्स भी होते हैं, लेयर्स होती हैं, और उसके बाद फिर स्पेस शुरू हो जाती है, ठीक है। जब ये अर्थ एटमोस्फेयर खत्म होता है तो स्पेस शुरू हो जाती है ना ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो स्पेस है नॉर्थ पोल की तरफ, नहीं, जब आप उन्होंने किला कहा जी नॉर्थ पोल की तरफ, भाई नॉर्थ पोल का थोड़ी मतलब है, नॉर्थ पोल तो अर्थ सरफेस के ऊपर अगर आप ट्रैवल करके एक खास डायरेक्शन में चले जाएं तो आप नॉर्थ पोल में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्थ पोल ऊपर, ये कोई थोड़ी है नॉर्थ पोल, ठीक है, जब ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो ऊपर की तरफ इशारा करने से तो बेसिकली आप क्या है, किस तरफ इशारा करें, किस डायरेक्शन में इशारा करें, स्पेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना तो आप बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ ही चुके होंगे ना, सोलर सिस्टम जो कैसा होता है और स्पेस होती है ना अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो भाई ऑल यू आर डूइंग इज पॉइंटिंग टूवर्ड स्पेस, ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला स्पेस में है? नहीं, अल्लाह ताला स्पेस में नहीं है। अप डाउन लेफ्ट राइट, ये डायरेक्शंस तो हमारे बनाए हुए हैं ना, ठीक है ना। भाई अगर आप अर्थ का नॉर्थ पोल जो है उसको आप नॉर्थ पोल अभी कह रहे हैं, लोगों ने कन्वेंशन बन, इसको कन्वेंशन कहते हैं, आपने कन्वेंशन कर दिया कि इस तरफ जो जो जगह है ना वो नॉर्थ पोल है। अगर आप स्पेस में जाएं और स्पेस में जा करके यूं खड़े होने की वजह यूं खड़े हो जाएं, ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर पॉइंटिंग, ठीक है ना। तो ये कोई नॉर्थ और साउथ वाली कोई चीज है ही नहीं। एनीवे, मतलब कहने का ये है मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला की तरफ हम जब यूं करके इशारा करते हैं तो हम सिर्फ जो है वो स्पेस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या अल्लाह ताला स्पेस में है? नहीं, अल्लाह ताला स्पेस में नहीं है। अल्लाह ताला कहाँ है? दिल में, माशाल्लाह, क्या जवाब दिया अल्लाह ताला इनके दिल में जी। तो अल्लाह ताला जो है, जिसको के हमारा अकीदा है, वो है अल्लाह ताला अर्श पर है, ठीक है। अल्लाह ताला अर्श पर है, ठीक है। दिल में होने का दूसरा मतलब होता है, उसे फिर बात करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला एवरीवेयर, नहीं ये भी गलत जवाब है, अल्लाह ताला एवरीवेयर पकड़ के बंद कर देंगे यहाँ वाले, ठीक है। तो अल्लाह ताला एवरीवेयर भी नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो हम ऐसे पॉइंट करते हैं ना, तो ये ऐसे पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप सब जो है जहां जहां भी बैठे हुए, किसी ना किसी तो जगह कमरे में ही बैठे होंगे ना, अपने घर के कमरे में बैठे हुए, यहाँ पर लोग कमरे में बैठे हुए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इस कमरे की एग्जाम्पल समझे, ठीक है, कि जैसे ये जो कमरा है ना, ठीक है, दिस रूम दैट वी आर सिटिंग इन, ठीक है, ये जो रूम है, इमेजिन दैट दिस रूम इज ऑल ऑफ अल्लाह क्रिएशन, اللہ تعالیٰ کی مخلوق سب کچھ جو ہے وہ اس روم کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. اب مخلوق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ذرا ہائی لیول پہ اگر ہم بتائیں مخلوق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. سن, ٹھیک ہے, سٹارز آ جاتی ہیں, سن کے تحت سارے سٹارز آ گئے, ٹھیک ہے. اور مخلوق میں کیا کیا آ جاتا ہے, مخلوق کریشن, کریشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, سن انہوں نے بول دیا یعنی سٹارز, کلاؤڈ, ہاں, اور پلانٹس آ گئے سارے, سٹارز بھی آ گئے پلانٹس بھی آ گئے, اور ہاں ان کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے انسان رہتے ہیں اور حیوان رہتے ہیں اور ماؤنٹین, یہ سب کچھ جو ہے وہ مخلوق میں آ گیا. اور کیا ہے مخلوق کے اندر, دا سیون اسکائز, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ساتوں آسمان, ساتوں آسمان یہ بھی مخلوق کے اندر ہی ہیں, ٹھیک ہے. زمین یہ مخلوق کے اندر ہے, اور مخلوق کے اندر جن جن بھی رہتے ہیں, ایئر ایئر بھی مخلوق میں, ٹھیک ہے جی, اور مخلوق کے اندر اس سے بڑی بڑی چیزیں اور کیا ہیں جو کہ مخلوق کے اندر ہیں, مخلوق میں ہی شامل ہیں, مطلب سمندر بھی, ٹھیک ہے, سمندر تو اس ارتھ کے اندر ہی ہے نا, ماؤنٹین سب چلے, اب زمین سے ذرا باہر نکلیں, آسمان تک پہنچ گئے نا, مصطفیٰ بھائی نے کہا بھی ساتوں آسمان بھی اس میں شامل ہیں, اور کیا ذرا باہر نکل کر کے سوچیں کریشن میں اور کیا چیز شامل ہے. جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ملکی ویز تو ہاں گیلیکسیز, تو یہ ساری گیلیکسیز اور یہ ماؤنٹینس اسٹارز اور سن اور یہ ساری چیزیں بلیک ہول, تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کریشن کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے. یہ فزیکل کریشنز ہیں, فزیکل کریشنز مٹیریل کریشن ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اندر جو اسپرچل ورلڈ ہے وہ بھی تو شامل ہے نا, ٹھیک ہے. تو اسپرچل ورلڈ کے اندر جنت آ جاتی ہے, جہنم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آ جاتی ہے جہنم بھی, اور یہ جو سیون اسکائز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اس کو امیجن کریں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ جو کمرہ ہے نا, اس کے اندر اللہ کی ساری کریشن موجود ہے, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, ساتوں آسمان, جنت, جہنم, سب کچھ اس کریشن میں شامل ہے, اس کمرے کے اندر ہے. اس کمرے کے اراؤنڈ کیا چیز ہے, ہاں برزخ بھی آ گئے, اس کمرے کے اراؤنڈ کیا چیز ہے, کمرے کے اراؤنڈ ادھر اس کو ہے کمرہ, یہ کمرے کی بات کر رہا ہوں, اس کمرے کو کس چیز نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, دیواروں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, دیواروں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اور دیواروں کے باہر پھر کچھ اور ہوگا, جو کچھ کریشن ہے وہ ساری کی ساری اس کمرے کے اندر ہے, اور ساری کی ساری از سراؤنڈڈ بائی دس دیوار, ٹھیک ہے, اور دیوار کے باہر پھر کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم اللہ کی بات کریں اور کریشن کی بات کریں اور دیواروں کی بات, تو ہم کس چیز کو کس سے پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں, یہ دیواریں جو ہے وہ کیا ہیں, جی چھوٹی سی ہیں, ہاں یہ جو والز ہیں نا, یہ جو ہیں وہ عرش کی مانند ہیں, عرش کی مانند, ٹھیک ہے. یہ جو والز ہیں نا کمرے کے اراؤنڈ, یعنی ان عرش, اس عرش نے, ان والز نے ہر چیز کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے, ہر چیز کے اراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس دیوار کے باہر کون ہے, صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے, ٹھیک ہے نا. عرش کے اوپر, عرش کے باہر, یعنی اس دیوار کے باہر صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات, ٹھیک ہے. دیوار کے باہر جو چیز ہے, اگر کوئی ایک فار ایگزامپل اینٹیٹی ہے, تو وہ ان دیواروں سے زیادہ بڑی ہوگی, تو آبویسلی اللہ تعالیٰ عرش زیادہ بڑے. جیسے کہ ایک کرسی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک آدمی بیٹھتا ہے, سمجھانے کے لیے خاطر, ٹھیک ہے, تو کرسی جو ہوتی ہے وہ اس آدمی سے ریلیٹیولی چھوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی نا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے, جو عرش ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس عرش کے باہر ہیں, ان ادر ورڈز عرش کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم یوں کر کے پوائنٹ کرتے ہیں نا, ام کلثوم یوں کر کے پوائنٹ کرتی ہیں, تو ام کلثوم کیا کہہ رہی ہوتی ہیں اصل میں, یا ام کلثوم کو کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے, وہ یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں इज आउटसाइड ऑफ दिस रूम ऑफ क्रिएशन, ठीक है ना, इस रूम से अल्लाह ताला बाहर हैं। अब यूं करके पॉइंट करें तो भी जो है वो अल्लाह ताला है, यूं करके पॉइंट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ के ऊपर, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट कर रही है, आगे से स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में बैठ करके अगर आप यूं ऊपर की तरफ पॉइंट करें तो भी आप अर्श की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल बैक में चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स पड़ेगा शायद पाकिस्तान के बैक में बिल्कुल अर्थ के ना, तो आप वहां पे खड़े होकर के आप यूं करके पॉइंट करें ऊपर की तरफ, ठीक है, तो भी आप किधर पॉइंट कर रहे हैं, यू आर पॉइंटिंग आउटसाइड ऑफ द एंटायर क्रिएशन, ठीक है, अर्श की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अर्श के बाहर है या अर्श के ऊपर है, ठीक है ना। और अर्श जो है वो ऐसा है कि अल्लाह ताला के पूरे के पूरे कंट्रोल में है, अल्लाह ताला इज कंप्लीटली सराउंडिंग द अर्श, सराउंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। कयामत के दिन क्या होगा कि उफास वो समावातु मतवियातुम बियमीनी ही, है ना, कि जितने आसमान होंगे वो सारे के सारे आसमान जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ के ऊपर लिपटे हुए होंगे, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला का यद हाथ जो है वो ऐसा होगा, इतना बड़ा होगा कि जितने आसमान हैं, ये जो सातों आसमान, ठीक है, ये सातों आसमान जो है ना वो बस लिपट जाएंगे अल्लाह ताला के हाथ के ऊपर, ठीक है। वो कैसे होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे क्या पता लगता है कि ये सात, ये जितने आसमान इतने बड़े बड़े हैं लेकिन अल्लाह ताला के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की अजमत जो है ना वो इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह ताला की नॉलेज फिर कितनी ज्यादा होगी, वी कैन नॉट इवन फैथम, ठीक है। तो ये जो है ना खजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ कि then having disembarked from the boat they started walking on the shore, ठीक है। अब वो फिर कश्ती जो है वो दूसरे किनारे पे पहुंच गई और फिर वो लोग कश्ती से उतर गए और फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया जमीन के ऊपर। तो ऑल ऑफ अ सडन अल खिजर अलैहिस्सलाम सॉ ए बॉय प्लेइंग विद अदर बॉयज, ठीक है ना। वो किसी बस्ती में पहुंचे, किसी इलाके में जहाँ पे लोग रहते थे, तो वहां पर एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। अल खिजर अलैहिस्सलाम किल्ड द बॉय विद हिज ओन हैंड्स, खिजर अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पकड़ा, मार दिया उसको, ठीक है, ही मर्डर्ड किल्ड, ठीक है। द बॉय डाइड, मूसा अलैहिस्सलाम सेड यू टुक एन इनोसेंट लाइफ अनजस्टली, इनडीड दिस वाज ए ग्रेव सिन यू कमिटेड, ठीक है, कि भाई तुमने जो एक छोटे बच्चे को मार दिया तो ये तो तुमने बहुत बड़े गुनाह का काम किया, ठीक है। अल खिजर सेड डिड आई नॉट टेल यू बिफोर दैट यू विल बी अनएबल टू रिमेन पेशेंट विद मी, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सबर नहीं करोगे। मूसा अलैहि सलाम नोटिस दैट दिस मैटर वाज फार मोर सीरियस इन द फर्स्ट वन, भाई ये तो बहुत हो गया, टू मच हो गया, ठीक है। पहले तो इन्होंने ये कश्ती को तोड़ा था तो चलो भाई ठीक है, वो कश्ती थी, इंसान तो नहीं था ना, ठीक है, कि उसकी गर्दन तोड़ दियो। अब तो इन्होंने एक इंसान को मार दिया और वो इंसान भी कोई बड़ा इंसान, कोई कातिल, कोई डाकू, कोई ऐसा नहीं, छोटा बच्चा, राइट, उसको उठा करके इन्होंने मार दिया। तो अब तो जो है ना ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, ये तो कोई मामूली बात तो नहीं है। तो अब इन्होंने ना ये एक्सक्यूज नहीं किया कि मैं भूल गया था, सॉरी मुझे माफ कर दें, ठीक है, लेकिन इतनी इनको समझ थी कि हाँ ये कुछ सीरियस मसला है जो कि वाकई मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है, वाकई मेरी समझ से बाहर है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि मूरा मूसा नोरिस दिस, सो देयरफॉर ही सेड इफ आई क्वेश्चन यू आफ्टर दिस, इफ कंडीशन, इफ आई क्वेश्चन यू आफ्टर दिस यू विल बी फ्री टू रिमूव मी फ्रॉम योर कंपनी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ एक्सक्यूजेस फ्रॉम मी, ठीक है, कि जहां तक मेरा ताल्लुक है ना भाई, मेरी बर्दाश्त से जाना आपका मामला पार हो गया है, आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं तो नहीं समझ पा पाता हूँ, मैं तो बस अब चुप नहीं रह सकता, ठीक है। तो अब इन्होंने बस कंडीशन लगा दी कि दोबारा अगर मैं करूं तो आप मुझे अलग कर दीजिएगा जी। हाँ, ये आपने भी यही सवाल किया जो कि आप ही ने किया था है, दूसरे लोगों ने नहीं देखा। हाँ, वो जाहिर है अगर दूसरे देखते तो फिर एक शोर मच जाता, लोग आके पकड़ लेते कि भाई हमारे बच्चों को मार दिया, चलो भी इसको भी मारो, ठीक है। लेकिन अपेरेंटली ऐसे ही मामला हो रहा था कि खजर अलैहिस्सलाम जो काम करते थे ना, तो या तो वो छुप के करते थे या किसी तरीके से अल्लाह ताला छुपा देते थे, दूसरे लोग नजर यानी सामने होते हुए भी कभी होता है कि आपको नजर नहीं आता, ठीक है। जी ठीक है, तो किसी को ऑब्वियसली नजर नहीं आया, वरना तो इनको पकड़ लिया जाता, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि आफ्टर दैट दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन अंटिल दे पास बाय ए विलेज, दे रिक्वेस्टेड द विलेज पीपल टू हाउस देम एज गेस्ट, ठीक है। तो ये एक गांव में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि आप जो है वो हमें मेहमान बना लें, ठीक है। दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी हम आपको मेहमान नहीं बनाते, हम आपकी मेहमानदारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दिस हैबिटेशन यानी इस बस्ती में दे नोटिस द वॉल दैट वाज अबाउट टू कोलैप्स, ठीक है। उन्होंने फिर एक वो देखी, जगह देखी जिसमें कि एक दीवार बनी हुई थी और वो दीवार जो है ना वो गिरने वाली थी, ठीक है। तो इट वाज अबाउट टू कोलैप्स, इरफान साहब सोच लेंगे तो आइंदा ये नहीं करेंगे। जी तो अल-खिज़र अलैहिस्सलाम मेड इट स्टैंड स्ट्रेट विद हिज ओन हैंड्स, सरप्राइज मूसा अलैहिस्सलाम सेड वी रिक्वेस्टेड देयर हॉस्पिटैलिटी, दे रिफ्यूज्ड। ठीक है, वैसे टाइम भी खत्म हो गया, बस ये मैं पढ़ के खत्म करने वाला हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई उनसे कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि आपने जो है वो इनको कहा था कि मुझे हमें खाना दो, हमें मेहमान बना लो, और इन्होंने तो मना कर दिया, और आप जो है ना आपने उनकी एक जो गिरने वाली दीवार थी उसकी दीवार को जो आपने ठीक कर दिया, ये आपने किस किस्म की बात करी। इफ यू विश यू कुड हैव चार्ज वेजेस फ्रॉम देम टू डू इट, आप उनसे पैसा भी ले सकते थे कि भाई ठीक है आपने मना कर दिया कि हमें आप फ्री खाना नहीं देंगे, लेकिन हमने आपका ये काम कर दिया है तो नाउ एटलीस्ट उसकी पेमेंट में आप हमें कुछ खाना वाना दे दें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को लगी थी भूख, ठीक है, तो उनको खाना चाहिए था और इन्होंने जो है वो खाना खिलाने से इनकार कर दिया। इफ यू विश यू कुड हैव चार्ज वेजेस फ्रॉम देम टू डू इट, अल खिजर सेड हाजा फिराक बैनी व बैनक, ठीक है, नाउ दिस इज इनफ बिटवीन यू एंड मी, इट मींस दैट द कंडीशन नाउ स्टैंड्स फुलफिल्ड, देयरफॉर टाइम हैज कम फॉर यू एंड मी टू पार्ट कंपनी, ठीक है, अब वक्त आ गया है, अब जो है ना मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि देन आफ्टर टेलिंग मूसा अलैहिस्सलाम द रियलिटी बिहाइंड द थ्री इवेंट्स, अल खिज़र सेड ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا। तो ये फिर एक डिटेल डिस्कशन होगी कि अब खजर अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया कि मैंने क्यों किया था पहला वाला काम, दूसरा वाला काम और तीसरा वाला काम। जी कोई क्वेश्चन है आपके पास जैसे है तो आप पूछिए, और यहाँ क्लास में जो क्वेश्चन पूछा है ना इस खजर अलैहिस्सलाम स्टिल अलाइव, तो इसका जवाब बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी बड़ी डिटेल है। जी आप पूछिए। उन्हें पता चल गया था, बच्चों को पता, हाँ बच्चा मर गया था, लोगों को पता नहीं लगा लेकिन इनको तो पता था ना कि बच्चा मर गया, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कहाँ पर रखा था, पता नहीं, उन्होंने उसको दफन कर दिया होगा, दफन तो करना होता है, दफन कर दिया होगा, हमें नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ उसकी, फिर ना वो डिटेल नहीं बताई है किसी ने कि बच्चे के साथ उन्होंने क्या किया। खिजर अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे, वो तो मजमाल बहरेन के पास रहते थे उस वक्त, ठीक है, यानी खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जो है ना वो किताबों में लिखी हुई हैं, तो उनसे ये पता लगता है कि खिजर अलैहिस्सलाम ही इज़ लाइक अ नोमैड ट्रैवलर, ठीक है, वो किसी एक जगह पर नहीं रहते बल्कि ही कीप्स ट्रैवलिंग, कभी वो कहीं चले जाते हैं फिर वो कहीं चले जाते हैं फिर वो कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से खाना बदोश लोग कहा जाता है, नोमैड जिनको कहते हैं ना, तो उनका कोई एक सेट घर नहीं है, ठीक है। हाँ वही आप ही ने भी सवाल किया था कि वो अभी भी जिंदा है कि नहीं है, तो इसके बारे में उलमा में दो ओपिनियंस हैं, एक ग्रुप ऑफ उलमा का ये ओपिनियन है और बेस्ड ऑन देयर ओन एविडेंस, सारे के पास अपने अपने प्रूफ्स हैं, तो एक ग्रुप ये कहता है कि नहीं वो जिंदा नहीं है और दूसरा ग्रुप जो है वो अपने एविडेंसेस की बेसिस पर कहता है कि नहीं वो जिंदा है, ठीक है। बच्चा जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में, इसकी तो जब वो रीजन बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है उसका मामला, लेकिन जन्नत जहन्नुम का एक्चुअली वो एक अलग डिटेल है, वो बाद में बात करेंगे। हाँ और कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ क्लासेस में, किसी को कोई और सवाल, इधर भी मैं देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ यहाँ तो क्वेश्चन आए हैं, देखा ही नहीं अभी तक। हेल एंड पैराडाइज, डिड मूसा अलैहि सलाम लर्न तकवीनी नॉलेज फ्रॉम खजर अलैहि सलाम? सॉरी ये बंद हो गया था मेरा फोन, तो मैंने अभी खोला आपका क्वेश्चन। तो डिड मूसा अलैहि सलाम लर्न तकवीनी नॉलेज फ्रॉम खजर अलैहि सलाम? उन्होंने थोड़ी नॉलेज सीखी खजर अलैहि सलाम से, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि खजर अलैहि सलाम ने उनको रीजंस बताए, तो इतनी नॉलेज तो उन्होंने सीखी, लेकिन उससे ज्यादा फिर नहीं सीख सके और वापस चले गए। हेल एंड पैराडाइज क्या आप पूछना चाह रहे हैं? पैराडाइज यानी ये बच्चा किधर जाएगा पैराडाइज में? अच्छा, हेल एंड पैराडाइज, हो सॉरी, आप जवाब दे रहे थे मुझे उस वक्त जब मैं क्रिएशन के बारे में पूछ रहा था। तो हाँ, क्रिएशन के अंदर हेल एंड पैराडाइज भी डेफिनेटली शामिल है, और यूनिवर्स शामिल है, सोल्स शामिल हैं। वॉज खजर अलैहि सलाम ए प्रॉफिट? तो खजर अलैहि सलाम नबी हैं कि नहीं हैं, तो ये भी जो है ना वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन द उलमा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ उलमा बिलीव दैट खजर अलैहि सलाम वाज नॉट ए प्रॉफिट, बट ही वाज ए वली, ए फ्रेंड ऑफ अल्लाह, बट नॉट ए प्रॉफिट। जी नहीं, उनको गुनाह नहीं मिला था, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे थे ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे थे। ठीक है, चलिए टाइम हो चुका है, लेकिन बस आखिरी बात करके मैं क्लास बंद कर दूंगा। वो ये कि जो मलिकुल मौत है, मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो वो तो मारते हैं ना लोगों को, जितने लोग मरते हैं वो उनके हाथों में ही मरते हैं ना, सारे के सारे। लेकिन क्या इजराइल अलैहिस्सलाम को गुनाह मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से मार रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को नहीं मार रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से खजर अलैहिस्सलाम का भी मामला एग्जैक्टली यही था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की मर्जी से कर रहे थे, इस वजह से उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। जी ठीक है, चलिए क्लास का टाइम काफ़ी हो चुका है, वैसे भी लड़कियों की क्लास भी होने वाली है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।